इशिका रियूनियन पार्टी से वापस राजवंश विला लौट आई थी। दो दिन बाद वसुधा का जन्मदिन था और उसे काफी ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। इशिका वहां लौटी तब सेलिब्रेशन की तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। वसुधा के साथ बात करने पर इशिका को पता चला कि इस पार्टी में अभिमन्यु उन दोनों की शादी सबके सामने रिवील करने जा रहा है। इशिका को मन ही मन बहुत स्पेशल फील हो रहा था, लेकिन साथ वसुधा की बातों ने इशिका को चौंका दिया था। इशिका उनसे इस बारे में कुछ पाती कि तभी आयशा वहां कुछ लोगों के साथ आई। वो डिज़ाइनर थे जिन्होंने अपनी बेस्ट डिज़ाइन को उस वक्त कैरी कर रखा था। आयशा ने वहां आते ही वसुधा से कहा, दादी, मॉम ने मुझे कहा है कि मैं आपके लिए एक अच्छा सा ड्रेस डिसाइड करवा दूं। आपके लिए इतना खास दिन है तो आपको सबसे खास दिखना चाहिए। मुझे खास दिखने के लिए इन कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो मुझसे ज़्यादा बड़ा दिन मेरी बहू के लिए होगा, तो मुझे उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करने हैं। वसुधा ने सख्ती से जवाब दिया और फिर इशिका का हाथ पकड़कर एक डिज़ाइनर के पास गई जिन्होंने इवनिंग गाउन का कलेक्शन ले रखा था। उसके पास में दो डिज़ाइन थे। वसुधा ने उनमें से इशिका के लिए एमरल्ड ग्रीन कलर का गाउन सिलेक्ट किया। उन्होंने इशिका को दिखाते हुए कहा, तुम ये वाला ड्रेस पहनोगी, तुम्हें पसंद तो आया ना बहू? इशिका ने हाँ में सिर हिला दिया। वसुधा ने वो गाउन इशिका के लिए फाइनल कर दिया था, जिसके बाद आयशा उनके साथ वापस चली गई। वसुधा ने इशिका के लिए जो गाउन लिया था उस डिज़ाइनर के पास से उसी कलर का एक और गाउन था, बस डिज़ाइन में थोड़ा ही फ़र्क था जिसे आसानी से कोई नोटिस नहीं कर सकता था। आयशा ने उस डिज़ाइनर से कहा, मुझे ये गाउन भी चाहिए। पार्टी में एक ही कलर के एक जैसे ड्रेस दो लोग पहनते हैं तो अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाता है। ऊपर से दोनों ड्रेसेस में बस 19-20 का फ़र्क है। क्या आप भी उनके जैसा दिखना चाहती हैं? डिज़ाइनर ने हैरानी जताते हुए पूछा। मुझे उसके जैसा कभी नहीं दिखना है। एक्चुअली ये मैं अपनी आंटी के लिए ले रही हूँ। वो बाहर से आ रही हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लिए ड्रेस डिसाइड नहीं लिया होगा। आयशा ने हल्के गुस्सा में जवाब दिया। उसे गुस्सा आता था जब कोई उसे इशिका से कंपेयर करता था। ऊपर से इशिका उससे दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती थी। आयशा के फिजिकल फीचर्स आदर्श जैसे थे। जब वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालती थी तभी दिखने में अच्छी लगती थी, जबकि इशिका के खूबसूरत होने की वजह से सिंघानिया मेंशन में उसे ढंग के कपड़े तक नहीं पहनने देते थे। डिज़ाइनर ने उससे आगे ज़्यादा नहीं पूछा और दोनों गाउन फाइनल कर दिए थे। वहीं उसके बाद आयशा अपने कमरे में पहुंची तो नक्श वहां पर था। उसे देखते ही नक्श ने कहा, पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है और एक बात का प्रॉमिस करती हूँ कि इस पार्टी के बाद इशिका सिंघानिया किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। आयशा ने जवाब दिया, जिस पर उसने मुस्कुराकर थम्स अप किया। नक्श भी यही चाहता था कि इशिका की बदनामी हो ताकि मजबूरी में इशिका को उसके पास लौटना ही पड़े। जल्द ही दो दिन बीत चुके थे और इन दो दिनों में वसुधा के बर्थडे की काफ़ी शानदार तैयारी कर दी गई थी और वो दिन आ ही गया जिस दिन वसुधा का बर्थडे था। पूरी राजवंश फैमिली उसी में लगा हुआ था। इशिका की आंख खुली और वो बाहर आई तो उसने देखा अभिमन्यु ऑफिस जाने के बजाय लिविंग रूम में बैठा हुआ था। अभिमन्यु को देखकर इशिका के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो उसके पास गई और पूछा, आज आपको ऑफिस नहीं जाना मिस्टर राजवंश? अभिमन्यु का ध्यान अपने लैपटॉप में था। इशिका की आवाज़ सुनकर उसने उसकी तरफ देखा। इशिका भी नींद से उठकर आई थी, इस वजह से उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। नाइट ड्रेस में भी वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। अभिमन्यु ने तुरंत उससे नज़रें हटा ली और सामान्य होकर कहा, फिलहाल मुझे कोई काम नहीं है। 10 बजे एक मीटिंग है, 3 बजे फिर से किसी काम से जाना है, सो डोंट वरी, डिनर तक आ जाऊंगा। हाँ तो फिर मीटिंग है तो आपको ऑफिस चले जाना चाहिए, इशिका ने जल्दी से कहा। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ से निकालना चाह रही हो? अभिमन्यु ने इशिका को घूरते हुए पूछा। अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आपका काम टाइम से हो जाए ताकि आप रात को डिनर तक फ्री रहें, इशिका झट से सफाई देते हुए कहा। अभिमन्यु काउच से खड़ा हुआ और इशिका की तरफ देखकर बोला, दादी चाहती है कि पहले हम ड्रेस ट्राई कर लें। क्या और क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? इशिका ने आंखें बड़ी करके पूछा। अभिमन्यु उसके पास आया और बोला, ज़रूरत की बात तुम दादी से कर सकती हो, फिलहाल मेरे पीछे आओ। इतना कहकर अभिमन्यु सामने के कमरे में जाने लगा। इशिका उसके पीछे जा रही थी। वहां जाकर उसने देखा कि वसुधा ने उसके लिए जो गाउन तैयार करवाया था वो पूरी तरह रेडी होकर आ चुका था। वो एक एमरल्ड ग्रीन गाउन था जो एक बॉल गाउन था और काफ़ी एक्सपेंसिव भी था। उसके साथ मैच करती हुई रियल एमरल्ड ग्रीन ज्वेलरी मानो क्वीन को पहनाई हुई थी। उसी के पास में एक ब्लैक टक्सीडो रखा हुआ था जिसके साथ गाउन से मैच करती हुई टाई थी और उसके कफलिंग्स पर ठीक वैसा ही एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ था जैसा गाउन में था। इशिका ने तुरंत अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा जिस पर हल्की सी स्माइल थी। इसका मतलब उसका मूड अच्छा था। दादी उन्हें साथ लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी और उनकी ये छोटी छोटी कोशिशें इशिका को बहुत अच्छी लगती थी। इशिका आगे गई और ड्रेस निकालने लगी। इस बीच उसने अभिमन्यु से पूछा, पार्टी के टाइम तुम्हें कॉल आया था, पृथ्वी ने बताया कि तुम किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हो, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? अभिमन्यु इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। इशिका का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु अपने कदम धीरे धीरे इशिका की तरफ बढ़ा रहा था। उसे अपने पास इस तरह आता देखकर इशिका अपने कदम पीछे लेने लगी और आखिर में वो दीवार के जाकर लग गई थी। अभिमन्यु इशिका के बिल्कुल करीब आया और उसके कान में आकर धीरे से बोला, तुम्हें नहीं लगता मिस सिन्हानिया कि हमें फिलहाल इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम दोनों के कपड़े काफी सोच समझकर एक जैसे डिजाइन किए हुए हैं, ना कि दूसरी बातों के बारे में? अभिमन्यु के होंठ इशिका के कान के बिल्कुल पास थे। अगर वो एक इंच भी आगे बढ़ता तो शायद वो उसके कान पर किस कर देता। अभिमन्यु जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था। इशिका के गाल लाल होने लगे थे, उसकी दिल की धड़कनें बेकाबू होकर शोर कर रही थी। अभिमन्यु वहां से जाने को हुआ तभी इशिका ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। इस वक्त इशिका और अभिमन्यु के होंठ एक दूसरे के बेहद करीब थे, उनकी नोज आपस में टच हो रही थी। तो क्या लगता है मिस्टर राजवंश, हमारे कपड़ों में कोई कमी है? इशिका ने अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए पूछा। अभिमन्यु उसे परेशान कर रहा था तो वो कहां पीछे हटने वाली थी। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद की ताकि वो इशिका से अपना ध्यान हटा सके और कुछ पल रुककर बोला, मैं कैसे बता सकता हूँ, हमने ट्राई भी नहीं किए हैं। तो फिर जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं, ना कि कुछ और, इशिका ने जवाब दिया और कपड़े लेकर जल्दी से चेंजिंग रूम में जाने लगी। अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो भी जल्दी से चेंजिंग रूम पर चला गया और इस वक्त उन दोनों का हाथ अपने अपने सीने पर था क्योंकि दोनों का ही दिल तेजी से धड़क रहा था। लगभग 5 मिनट बाद इशिका चेंजिंग रूम से बाहर आई। गाउन के नीचे का फ्लेयर काफी बड़ा था, वहीं ऊपर से वो शोल्डर लेस था। इशिका बाहर आई तो उसकी नजर तुरंत अभिमन्यु पर चली गई। इस वक्त दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे जो उन्हें मैचिंग कपड़ों में बिल्कुल किसी हैप्पी कपल की तरह लग रहे थे। उतने में वसुधा भी निवेदिता के साथ वापस आ गई। उन्होंने अभिमन्यु और इशिका को साथ में देखकर कहा, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना निवेदिता, देखना इन दोनों के बच्चे भी बहुत क्यूट होंगे। सोच रही हूँ कि वो अभिमन्यु जैसे लगेंगे या मेरी बहू जैसे।
वसुधा की आवाज़ जब अभिमन्यु और इशिका के कानों में पड़ी तो तुरंत एक दूसरे से नजरें हटा ली थी। अभिमन्यु ने अपना ब्लेजर उठाते हुए कहा, मैं चेंज करके मीटिंग में जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं डियर वाइफ। इशिका उसके शब्द सुनकर हैरान रह गई, उसने पहली बार उसे डियर वाइफ कहकर बुलाया होगा। उसने मुस्कुराकर बस सिर हिलाया और फिर अभिमन्यु वहां से चला गया। शाम के लगभग 6 बजे के करीब पार्टी शुरू हो चुकी थी और ये राजवंश एरिया के मेन विला में हो रही थी। उसकी पार्टी हॉल एक होटल की लॉबी से भी बड़ा था और पार्टी की तैयारी सच में काफी ग्रैंड की गई थी। इशिका इस वक्त वसुधा के साथ में थी, वो भी तैयार हो चुकी थी। उसने वही ड्रेस पहना था जो वसुधा ने उसके लिए सिलेक्ट किया था। रियल एमरल्ड ज्वेलरी के साथ बालों को उसने हल्का कर्ल करवाकर मैसी बन बना रखा था। चेहरे पर बिल्कुल लाइट मेकअप के साथ भी वो काफी खूबसूरत लग रही थी और इस वक्त वसुधा के साथ खड़ी थी। वसुधा जी ने रियल सिल्क की बेज साड़ी पहनी थी जो किसी वक्त में उन्हें अभिमन्यु के दादाजी ने गिफ्ट की थी और उसके साथ रियल पर्ल ज्वेलरी। सब लोग वसुधा को विश करने के लिए उनके पास आ रहे थे तो मजबूरन इशिका को भी उनके सामने मुस्कुराना पड़ रहा था। वसुधा ने इशिका से कहा, बहू तुम्हें इन सबको ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पार्टी एंजॉय करो। इशिका ने उनकी बात पर हामी भरी और दूसरी तरफ आ गई। उसने देखा सभी मेहमानों के बीच आदर्श और राधिका भी वहां पर पहुंचे। राधिका को देखकर इशिका के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और वो उनके पास चली गई। आयशा पहले से राधिका के साथ मौजूद थी और उसने इस वक्त लैवेंडर कलर की हैवी साड़ी पहन रखी थी जिसके साथ लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज था। राधिका के सामने आयशा ने जानबूझकर इशिका से पूछा, इशिका अब तक चाचू पार्टी में नहीं आए, वो हैं कहाँ? वो काम पर गए हैं, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इशिका ने जवाब दिया। आयशा इशिका के साथ में अच्छा बर्ताव करने का दिखावा कर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, चाचू आज भी अपना शेड्यूल किसी को बताना पसंद नहीं करते हैं, देखो सबको काम का बोल कर गए हैं और वहां अपनी वाइफ को पिक करने के लिए निकले थे, अब उन्हीं के साथ आएंगे। आयशा के बताते ही आदर्श ने पूछा, क्या अभिमन्यु की वाइफ वापस आ गई है? आयशा ने जवाब में कहा, हाँ डैड वो कुछ टाइम पहले ही वापस आई थी, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है पर फिर भी दादी के बर्थडे के लिए खास यहाँ पर आई हैं। आदर्श को जवाब देने के बाद आयशा ने कहा, ओके इशिका बुरा मत मानना, प्लीज तुम आंटी से थोड़ा दूर रहना, मैं नहीं चाहती कि उनकी शादी खराब हो। आयशा का साथ देते हुए आदर्श ने कहा, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम हमें हमारी फैमिली ना मानती हो लेकिन ये तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हारा बाप, तो हम तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। अगर तुम यहाँ रही तो लोग अभिमन्यु पर सवाल खड़े करेंगे, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बाकी किसी की बात भले ही मत सुनो लेकिन तुम्हें अपने डैड की बात माननी चाहिए। लेकिन आपने तो कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना, जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप मेरे डैड बन जाते हो और मैं आपकी बेटी, इशिका ने कड़वाहट से जवाब दिया। आदर्श इतने लोगों के सामने इशिका से बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने राधिका से कहा, इस लड़की से बात करना ही बेकार है, चलो जाकर मिसेज राजवंश को बर्थडे विश करते हैं। तुम लोग जाओ, मेरी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है और इतने लोगों के बीच में मुझे आजकल कंफर्टेबल भी फील नहीं होता, राधिका ने कहा। आदर्श किसी भी मामले में राधिका को फोर्स नहीं करते थे, इसलिए वो आयशा के साथ वहां से बर्थडे विश करने के लिए चले गए थे। हालांकि जाने से पहले उन्होंने इशिका को सख्त हिदायत दी थी कि वो राधिका के साथ कोई उल्टी सीधी बात ना करें। राधिका उन लोगों के जाने का मौका ही देख रही थी। उनके जाते ही उन्होंने तुरंत इशिका से कहा, इशिका मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि अभिमन्यु और तुम्हारे बीच जो भी अफवाह उड़ रही है वो सिर्फ एक अफवाह ही है ना बेटा? नहीं मिसेस सिंघानिया, वो एक्चुअली मैं और अभिमन्यु, इशिका उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, इशिका। इशिका ने पलट कर देखा तो वहां कियारा थी जो पार्टी में आई थी। अब वो काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और व्हील चेयर के बजाय खुद ही चलकर आ रही थी। कियारा आते ही इशिका के गले लगकर बोली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, भले ही मैं तुमसे दूर थी लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें पता थी। बोलते हुए कियारा इशिका से अलग हो गई और उसके चेहरे पर हल्की उदासी के भाव थे। उसने धीरे से कहा, बाहर लोग तुम्हारे और मिस्टर राजवंश के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे बस इतना जानना है कि वो सिर्फ अफवाह ही है ना? हाँ वो सिर्फ अफवाह ही है, इशिका ने फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसके लिए अभिमन्यु और अपने रिश्ते को सबके सामने कह पाना इतना मुश्किल क्यों था, लेकिन आज अभिमन्यु उसकी हर मुश्किलें आसान करने वाला था। इशिका ने ज्यादा नहीं सोचा और कियारा से बात करने लगी। उनके साथ गौतम और नैना भी आए हुए थे। इशिका ने उन लोगों की तरफ देखकर कहा, राघव नहीं आए पार्टी में? वो आना चाहता था पर डैड ने उन्हें किसी काम में लगा दिया। एक्चुअली एक फोटो है जिसे डैड क्लियर करवाकर कुछ साबित करना चाहते हैं, कियारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एक फोटो के चक्कर में राघव अटक गया था। ये सुनकर इशिका और राधिका दोनों को हैरानी हुई। राधिका ने गौतम से कहा, आप किस फोटो के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो इतना खास है? गौतम ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, हाँ खास तो बहुत है, क्योंकि उस फोटो में मैडम मर्चेंट जो है, मैं काफी बार उनसे मिला हूँ लेकिन खुशकिस्मती से एक ही बार फोटो क्लिक करवाई थी और वो भी धुंधली हो गई, तो राघव को बोला है कि वो उसे साफ करवा दे। मेरी मॉम का फोटो? प्लीज जब भी वो फोटो आए तो मुझे जरूर दीजिएगा, मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ, राधिका ने हल्का इमोशनल होकर कहा। क्या आपके पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है? गौतम ने चौंकते हुए पूछा। हमारे घर में आग लग गई थी जिसमें सब कुछ जल गया, ऊपर से तबीयत खराब रहती है तो कुछ याद भी नहीं रहता, मैं तो उनका चेहरा तक भूल गई हूँ, राधिका ने अफसोस जताते हुए कहा। हाँ तबीयत खराब होने की वजह से राधिका को काफी कुछ झेलना पड़ा था, जिसमें एक उनकी मेमोरी कमजोर होना भी था। शायद यही वजह थी कि वो इशिका को देखकर ये तक नहीं पहचान पाई थी कि उसकी शक्ल उनकी माँ से मिलती है। इशिका पूरी बात काफी गौर से सुन रही थी। उसके चेहरे की तरफ देखकर गौतम ने मन ही मन कहा, काश आपको अपनी माँ का चेहरा याद होता तो एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सकता था। आप क्यों नहीं पहचान पा रही है मिसेस सिंघानिया कि आपकी बेटी आप ही की माँ की तरह लगती है और बच्चे बदले गए हैं? जहां सब पार्टी में बिजी थे वहीं दूसरी तरफ आयशा एक अलग ही साजिश को अंजाम दे रही थी। इस वक्त वो एक लड़की के साथ थी जिसे वो जल्दबाजी में सबकी नजरों से छुपाकर राजवंश विला के अंदर लेकर जा रही थी।